तो आज हम सुनेंगे अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान अदिति बहन जी से।
ओम शांति। सभी प्यार से इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। इतनी ताकत है इस मंत्र में जो मन के संकल्पों को शांत कर दे, जो तन की व्याधियों को दूर कर दे, जो संबंधों के मन मुटाव को भी खत्म कर दे। तो जितना अंतर मन से इस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, उतना ही इसका प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। तो आइए इस महामंत्र का हम 3 दफा उच्चारण करें। मेरे साथ बोलेंगे आगे पीछे सभी। दुनिया में जब आपस में मिलते हैं तो दुनियादारी की बातें होती हैं, पर यहां हम सब मिले हैं किस लिए? अपने बारे में बात करने के लिए। बहुत टाइम हो गया, कभी बच्चों के बारे में, कभी दुनिया में होते हुए कारोबार के बारे में, जो कुछ भी उतराव चढ़ाव लाइफ में आते हैं उनके बारे में हम बहुत जिक्र करते हैं। टेलीविजन पर प्रोग्राम्स देखते हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में जानना, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये जो अंदर तनाव है, ये जो मन में कई बारी द्वंद आ जाता है, हम कभी दुखी हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, ये सब कहां, क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों लाइफ में कंफ्यूजन है, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर निर्णय नहीं ले पाते, क्यों हम लोगों पर आधारित हो जाते हैं, क्यों हमें टेंशन हो जाती है, ऐसी कई सारी चीजें जो अंदर हो रही हैं ना। एक है बाहर की दुनिया और एक है अंदर की दुनिया। इस अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर कैसे काबू किया जाए ना। कई लोग कहते हैं गुस्सा आ जाता है, तनाव आ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है ना। अपनी ही भावनाओं पर जानते हुए कि गलत है, अपनी ही भावनाओं पर हमारा ही नियंत्रण नहीं है, क्यों, क्यों? कोई भी चीज आपके पास है, आपकी है ना। तो जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, पर नियम से देखा जाए तो उसको आपका कहना मानना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा है, परंतु मानता नहीं है। क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, बोलो। टाइम। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं होता, हम अपनी स्थिति को, बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी सी बात करो। हाँ, क्या कारण है, कहना क्यों नहीं मानता है। समझो आपके पास मोबाइल है, आप कुछ करना चाहते हो पर हो ही नहीं रहा है, आपका है पर हो नहीं रहा है, नॉलेज नहीं है। देखो अभी थोड़ा थोड़ा पास आ गए, बच्चों का समझ नहीं आया, मोबाइल का समझ आ गए और क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सही कहा, पहली चीज ज्ञान नहीं है, और दूसरी चीज कोई भी चीज लाइफ में देखो, चाहे वो दुनिया के अंदर व्यक्ति हो या वस्तु हो, यदि वो आपकी है, आपके पास है, परंतु आपका कहना नहीं मान रही, उसके दो ही कारण होते हैं, एक ज्ञान की कमी और दूसरा शक्ति की कमी। यदि शक्ति नहीं है, ज्ञान है, तो भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, क्यों पता है ये होना चाहिए परंतु कर ही नहीं पा रहा है ना। और ज्ञान नहीं है, शक्ति है, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शक्ति को आप गलत तरीके से यूज कर लोगे। तो इस जीवन के अंदर भी हम सब जी रहे हैं, दूसरों की बात छोड़ो, अपनी बात करते हैं, हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, बच्चों की बात छोड़ो, मोबाइल की बात छोड़ो, फिर भी हम गलती करते हैं। सारे दिन में चेक करें तो न जाने कितनी गलतियां कर देते हैं, करते हैं, बहुत चीजें हैं हमें लाइफ में पता है ये राइट है ये रॉन्ग है, हमने स्कूल में पढ़ा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वहीं रह गया, ऐसे लिखते लिखते बहुत सारी बातें हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते। ऐसे हमारे सामने बैठे हैं तो ना जाने बहुत सारी गैदरिंग्स के अंदर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, परंतु प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, होता है ऐसे, परिवर्तन नहीं आता है। क्यों क्यों होता है ऐसे? परिवर्तन कहां चाहिए, बाहर चाहिए या अंदर चाहिए? अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, दोनों जगह ही चाहिए ना। लेकिन बाहर का आधार अंदर है या अंदर का आधार बाहर है, बताओ? बाहर का आधार अंदर है या अंदर का आधार बाहर है? अलग अलग बातें हैं। अब आप देखो, अगर आप अंदर से खुश हो तो आपको बाहर गलत सीन भी होगा ना, उसको अच्छा बना दोगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। हम इंतजार करते हैं मौसम का, वो बदले, कोई हमसे अच्छा बोले, ऐसा ही है ना, कोई मुस्कुराए तो हम मुस्कुराए, ऐसा है ना, कोई गुस्सा कर दे तो अभी अभी आ रही थी मुस्कुराहट, अभी क्या हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, है ना, उल्टा हो रहा है ना। बाहर का प्रभाव अंदर जा रहा है, होना क्या चाहिए, होना चाहिए ना, सब मानते हैं, परंतु होता क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर क्या है, प्रभाव उसका पड़ता है जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अंदर क्या है, हम मान लो ना अंदर क्या है, हम कुछ तो कमजोरी है ना, जो बाहर का प्रभाव अंदर आ रहा है ना। दूसरों की स्थिति या कहे परिस्थिति, पराई स्थिति मेरी स्वस्थिति पर हावी हो रही है ना। मेरे अंदर की स्थिति, अभी अभी खुश थी मैं, अभी अभी किसी ने मुझे कह दिया, अरे आप तो बिल्कुल ऐसे हो वैसे हो, आप में तो ये कमी है वो कमी है, और मेरी स्थिति क्या हो गई, ऐसा होता है सबके साथ होता है। तो इसका मतलब क्या था, वो ज्यादा पावरफुल था, होना क्या चाहिए, मेरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जानी चाहिए थी, हो क्या रहा है, उसका गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है, हो रहा है ना ऐसे, क्यों, वो पावरफुल है और मैं अंदर से कमजोर हूं। मैथमेटिक्स है ना, प्लस माइनस होता है ना, बच्चे भी जानते हैं, तो एक होता है प्लस एक होता है माइनस, प्रभाव किसका पड़ता है, जो ज्यादा बड़ा होता है ना। अगर प्लस ज्यादा है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर माइनस ज्यादा है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो जिसका प्रभाव होगा है ना ज्यादा, वही बाहर आएगा, वही आपको दिखाई देगा। तो अभी हमें क्या करना है? हो तो रहा है ऐसा लाइफ में, पर अब हमें क्या करना है? क्या करना है? अंदर के प्लस को बढ़ाना है। अब ये अंदर क्या है? बढ़ाना तो है, अंदर माइनस है, पर अंदर है क्या चीज जो प्लस हो रही है और माइनस हो रही है? आत्मा। वाह। अब आत्मा से तो अधिकतर लोग डरते हैं है ना, फिल्मों में देखते हैं आत्मा तो डर जाते हैं ना, है ना। डरने की चीज है? परम आत्मा कहते हो, महान आत्मा कहते हो, है ना, पुण्य आत्मा कहते हो, पवित्र आत्मा कहते हो ना, तो डरते हो? नहीं। वैसे भी हम सब क्या कहते हैं? हम कौन है? ह्यूमन बीइंग, यानी जीव आत्मा। तो दो चीजें हैं, एक है जीव और एक है आत्मा। दो चीजें हो गई ना। अब जीव के बारे में तो अगर आपको पता है तो भी अच्छा है, और अगर नहीं पता तो भी गूगल पर सर्च कर लो, मिल जाएगा, है ना। बॉडी के किसी भी ऑर्गन के बारे में डॉक्टर्स को भी बहुत नॉलेज है, और अब तो बहुतों को बहुत सारी नॉलेज हो गई है शरीर के बारे में जब से वो कोरोना आया, परंतु आत्मा के बारे में पता है? कितनों को पता है और कितना जानना चाहते हैं? है कोई जो जानना चाहते हैं लाइफ में? कभी ऐसा, अभी यहां पर तो पता है, हमें पता चलेगा, परंतु वैसे जनरली सोचो तो कभी लाइफ में हमारे कभी संकल्प ही नहीं आया। हम जब तक ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आए थे कभी माइंड में आया ही नहीं कि आत्मा के बारे में भी जाना जाए। आया किसी के माइंड में कभी? नहीं। बहुत चीजों के बारे में इच्छा होती है जानने की, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, पता होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, कारोबार कैसे चलेगा, खाना कैसे पकेगा, ये डिश कैसे बनेगी, है ना। बहनों को, भाइयों में कई चीजों में इंटरेस्ट होता है, ये कैसे खेलना है, वो कैसे खेलना है, तो बहुत सारा ज्ञान लेने की इच्छा तो होती है, पर अपना ज्ञान लेने की इच्छा कभी आई? आई? कभी भी नहीं आती। वंडर है ना, ये जीवन हम जी रहे हैं, है हम जीवात्मा, और हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। अब आप सोचो, आपको कहीं जाना है, जीवन की यात्रा है ना जैसे, और आप आधार कार्ड भूल गए, फिर क्या होगा? कितनी दिक्कत होगी ना, कितनी दिक्कत होगी। मोबाइल में है पर वो भी नहीं है, समझो, है ही नहीं ना। मोबाइल का चार्ज तो चल जाएगा, आधार ही नहीं है लाइफ का। देखो, नाम रूप, कहाँ रहते हैं, है ना, हमारे माता पिता कौन है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है जानना। जब ये ना हो तो पता चलता है, जब होता है ना तो किसी चीज की अहमियत नहीं होती, जब वो चीज नहीं होती ना तो याद आती है। आधार कार्ड है तो मजे से रह रहे हैं, है ना, काम कर रहे, पता है, गुम गया फिर देखो अपनी स्थिति क्या करें, सब चीजें तो उसी पर आधारित है, कितने परेशान हो जाएंगे। तो ये तो कार्ड है, मिल जाएगा, परंतु तो हमारे जीवन का आधार ही अगर नहीं है, हम जीवात्मा है, आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो फिर लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस होगी। आपको पता है, आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम, चाहे वो अंदर की हैं या बाहर की हैं, उनका मूल कारण है अधूरा ज्ञान। तो वही ज्ञान और शक्ति की कमी। यदि आपको जीव और आत्मा दोनों का संपूर्ण ज्ञान मिल जाए, और उस ज्ञान के साथ शक्ति भी मिल जाए, तो आप इस जीवन रूपी यात्रा पर इतने आराम से चलोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है अगर ये प्रॉब्लम आई भी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसे अपने प्रोफेशन का पूरा नॉलेज हो जाती है, तो फिर ये बीमारी क्यों हुई उसका कारण भी पता होता है और उसका निवारण भी पता होता है। इंजीनियर है तो उसको पता होगा कि ये क्यों प्रॉब्लम आई है और इसका निवारण क्या है। आप घर गृहस्थ को संभालते हो तो घर में कोई चीज क्यों खोई है, उसको कौन ले सकता है, उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा। कोई ऑफिस के अंदर है तो उसे अपने ऑफिस के उस कारोबार के बारे में पूरा ज्ञान होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो ऐसे ही इस जीवन में यदि आपको आत्मा और शरीर दोनों का ज्ञान है तो प्रॉब्लम आई के भी भले आएगी पर सॉल्यूशन आपके पास होगा। ऐसे नहीं कि हम ढूंढते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अब तो ऐसा हो रहा है कि हम डिस्टर्ब हैं, हमें रियलाइजेशन ही नहीं होती हम डिस्टर्ब हैं। होता है ना ऐसे होता है ना ऐसे। तो फिर क्या करेंगे? आज हम आपको आपसे मिलाएंगे। खुद से ही मिलना भूल गए थे तो आज हम खुद से मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने माइंड को इस सारी दुनिया से अलग कर लेते हैं, है ना। बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, तो अपना मोबाइल सभी स्विच ऑफ कर ले और अभी हम खुद खुद से मिलेंगे। मिलेंगे सभी? ओके। तो सभी जो भी आगे पीछे बैठे हैं अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, डिटैच हो जाएंगे हम सारी दुनिया से। ये कुछ घंटे हमारे लिए हैं, बस हमारे लिए। बहुत टाइम से इग्नोर किया है खुद को, तो ये कुछ पल किसके लिए हैं? बस आपके लिए। ओम शांति। एकदम रिलैक्स, पैरों को हल्का छोड़े। हाथों को हल्का छोड़े। रिलैक्स। शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला, हल्का। एक गहरी श्वास ले और छोड़े। मैंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्ञान लिया, बहुतों का साथ लिया। इस दुनिया में बहुत कुछ किया। पर बचपन से लेकर अब तक जिंदगी के उतराव और चढ़ावों से गुजरते दुनिया की इस भीड़ में, कर्मों के इस जाल में, कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ दिया। वो जो मैं थी, वो जो मैं अंदर से पवित्र, शुद्ध, शांत थी, वो जो मुझे चाहिए, वो सुख जो बचपन में मुझे बिना किसी मेहनत के अनुभव होता था, आज उसी अंदर की सच्ची अनुभूति के लिए है। मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता है, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को आधार बनाना पड़ता है। आज मैं अपने उस खोए हुए अस्तित्व को अंदर के सुख को, अंदर की शांति को इमर्ज करना चाहते हो महसूस करे, मेरा ये संकल्प बस एक इच्छा, जिंदगी की सब परतों को पार कर रही है। मेरे अंदर की उस छिपी हुई किरण को, उस प्रकाश को इमर्ज कर रही है, फील करे। जैसे एक गहरी गुफा में चमकता हुआ दिया, जैसे अंधकार में प्रकाश के किरण, वैसे ही मेरे अंदर का वो सुखद एहसास पुनः जागृत हो रहा है। ये कुछ पल मैं अपने साथ, अपने लिए, अपने अंतर के विकास के लिए सफल करना चाहते हो अनुभव करें। इस शरीर में चेहरे के ऊपर, मस्तक के बीच में एक ज्योति जगमगा रही है, लाइट, दिव्य प्रकाश, जैसे मिट्टी के दीपक में ज्योत जलती है, वैसे ही इस देह रूपी मिट्टी में ये ज्योति चमक रही है। यही शक्ति मैं हूं, चेतन, अजर, अमर, अविनाशी मैं हूं। खुद से मिलिए, ये अदृश्य शक्ति मैं हूं। ओम शांति। इस दुनिया में जो चीज बदलती है, समझो कोई व्यक्ति अभी अभी कुछ कह रहा है फिर कुछ और कहने लग जाए, अभी अभी ऐसा है और तुरंत बदल जाए, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब अपने शरीर को देखो, कुछ साल पहले कैसा था? अपनी तस्वीरें तो देखते होंगे ना एल्बम्स में, इतने सालों में कितना बदल गया है, बदला है ना। वातावरण के अनुसार बदल जाता है, परिस्थितियों के अनुसार चेहरा बदल जाता है, मूड बदल जाता है। भरोसा नहीं है इसका, है भरोसा? जिस चीज का भरोसा नहीं है वो आप हो? नहीं, आत्मा जो हम हैं वो ऐसे शरीर की तरह बदलती नहीं है, क्योंकि हम आत्मा सदा है। शरीर रहे ना रहे हम हैं। इसलिए ही तो जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, चल बसा। क्या कहते हैं? चल बसा। यहां से चला और कहीं जाकर बस गया, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। क्या खत्म हुआ? शरीर खत्म हुआ। जीव और आत्मा थी ना, जीव है पंच तत्वों, जैविक तत्वों से बना हुआ जीव, और पंच तत्व तो बदल ही जाते हैं, बदलते हैं ना। कुछ करो ना करो, यूज भी मत करो, खराब हो ही जाएंगे। घर को नया बनाओ, यूज करो ना करो, पुराना तो हो ही जाएगा। कोई भी चीज इस संसार की जो पांच तत्वों से निर्मित है, यूज करो ना करो वो पुरानी हो ही जाएगी। परंतु आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आप वंडरफुल बात देखो, हम सारी उम्र अपने आप को ये समझ के चलते हैं जो हम नहीं हैं। अब आप ही सोचो, हम जब छोटे थे है ना, तो सबसे पहले हमारे मदर फादर ने हमें जब हमारे बारे में नॉलेज दी, तो बच्चों को सिखाया जाता है ना, बच्चों आपकी आंखें कहाँ हैं, सिखाते हैं ना, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, ऐसे ऐसे सिखाते हैं ना। तो आपके हाथ कहाँ है, ये रहे, आपकी आंखें कहाँ है, ये रहे, आपके कान कहाँ है, ये किसके, आपके। आप कौन हो फिर? आप अलग हो और ये अंग अलग है, है ना। मेरा शरीर कहेंगे या मैं शरीर कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरा कहेंगे, मैं शरीर, मेरा कहेंगे ना, मेरे शरीर में दर्द है या मैं शरीर दर्द हूं, है ना। मेरी आंखों में तिनका चला गया या मैं आंखों में तिनका चला गया हूं, हाँ, क्या कहेंगे, मैं या मेरा? हाँ, पीछे वाले बोलो, कंफ्यूजन है कोई तो बोलो ना, फिर पीछे वालों को खड़ा करके पूछेंगे तो बोलो, मैं या मेरा? मेरा कहेंगे, कहेंगे ना। दो चीजें हो गई, एक मैं और एक मेरा। अब जब दो चीजें हैं, है ना, तो दो चीजों को बनाने वाला भी अलग अलग है। दो चीजों की अलग अलग चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर अलग कोई कंपनी बनाती है, हार्डवेयर कोई और कंपनी बनाती है। तो दो चीजें हैं, एक है जीव, एक है आत्मा, एक हूं मैं और एक है मेरा। लेकिन अब तक हम क्या कर रहे हैं, इस मेरे को क्या समझ रहे हैं, मैं समझ रही, ये मैं हूं। फोटो देखते हैं ना, कहते नहीं ये मैं हूं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वो आप हो, आप हो? नहीं, अभी तो कहेंगे नहीं, ये थोड़ी देर बाद बाहर में जाएंगे ना, सेल्फी खिंचवाएंगे तो ये मैं हूं ऐसे ही होगा ना तो ये है मेरा शरीर, और मैं कौन हूं? आत्मा। अब तक हमने शरीर समझकर हर कार्य किया, एक गलत आइडेंटिटी के साथ। आधार कार्ड गलत था आपका, और आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, इसीलिए दिक्कतें हो रही थी। और अब हमें पता चला है हम कौन हैं? आत्मा। फर्क क्या है, जीवन तो चल ही रहा था, चाहे शरीर समझ के चलाओ चाहे आत्मा समझ के चलाओ, है ना। कई बार ये प्रश्न उठता है, जीवन तो चल ही रहा है, क्या फर्क है? शरीर समझ के चलाओगे तो डर रहेगा, दुख रहेगा, परेशानी रहेगी। जीवन और मृत्यु, इसका डर कब है? जब हम शरीर समझ रहे हैं, पर आत्मा को तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं है। तो जब हम अपने को आत्मा समझकर इस शरीर को चलाते हैं, तो पहली चीज डर निकल जाता है। और दूसरी बात, हम खुद को यथार्थ समझ पाते हैं। एक चीज है अपने को गाड़ी समझकर चलना, और एक है अपने को ड्राइवर समझ के चलना। अंतर है? अंतर है। अक्सर लोग जा रहे होते हैं तो कहते, देखो वो गाड़ी जा रही है। एक्चुअली गाड़ी नहीं जा रही है, गाड़ी के अंदर जो जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी को कहाँ जाना है? जाना तो अंदर वालों को है, है ना। ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, ये शरीर हम हैं, शरीर का कुछ नहीं करना है। अंदर जो आत्मा है ना, उसी को ही इस शरीर द्वारा काम करना है, अच्छा या बुरा। और सबसे बड़ी बात, जब हम शरीर समझकर काम करते हैं तो क्या होता है, दूसरे को भी उसी आधार से देखते हैं, उसके बाह्य कर्मों के आधार पर उसे जज करते हैं, और फिर जैसे उसने गलत काम किया है उसका बदला लेने की सोचते हैं। अच्छा किया है तो वैसा उसको अच्छा देने की सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में बॉडी काम तो कर ही नहीं रही है। काम बॉडी से कौन ले रही है? आत्मा। तो जो प्रॉब्लम आई है वो बॉडी में नहीं आई है। भले उसने हाथ से काम किया, हाथ से थप्पड़ मारा या पैर से कुछ किया, परंतु करवाया किसने? पैर ने कुछ नहीं किया। हम क्या करते, हाथ ने कुछ किया तो हाथ से कुछ करेंगे, पैर ने कुछ किया तो पैर से कुछ करेंगे, मुंह से किसी ने कुछ बोला तो मुंह से जवाब देंगे। पर एक्चुअली में किसने बोला? डिफेक्ट कहां है? डिफेक्ट कहां है, मशीन में या मशीन को चलाने वाले में? मशीन को चलाने वाले में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जिसमें है उसको ठीक करना चाहिए, या प्रॉब्लम जिसके द्वारा वो क्रिएट कर रहा है उसमें? अब खाना बनाते हो तो बर्तन में बनाते हो, है ना। तो अगर खराब बन गया तो प्रॉब्लम किसमें? बर्तन में, सब्जी में या बनाने वाले में? समझ आया? तो जिसने बनाया, यानी जो कर्म कर रहा है, प्रॉब्लम उसमें आती है। जब भी कोई इंसान गलत बोलता है, गलत करता है ना, तो बेसिकली प्रॉब्लम उस काम में नहीं है। समझो कोई बच्चा है, वो झूठ बोलता है, मम्मी पापा को परेशान करता है, या उसमें कोई भी कमी कमजोरी आ गई है, उसका दिमाग नहीं चलता है, प्रॉब्लम कहाँ है? आत्मा में। तो वो जो अंदर है ना, वहां डिफेक्ट है, तो उसको वहां ठीक करना पड़ेगा। और वो ठीक हो जाए ना, डिफेक्ट निकल जाए, तो परफेक्ट बन जाओगे आप। और यहां अगर सब कुछ ठीक हो जाए ना, तो यहां और यहां, यानी कर्म, संबंध, वातावरण, परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं ठीक हूं तो सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं ही खराब हूं तो ठीक को भी खराब कर दूंगा। ऐसा ही होता है ना, मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं आपका मूड भी खराब कर दूंगी। और दूसरा खुश भी हो रहा होगा ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा, है ना, ये क्यों नहीं, ये क्यों खुश हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा खुश रहना। किसका? आत्मा। आत्मा का पावरफुल होना, होना। अब आत्मा को क्या चाहिए? जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड किया था ना, नीचे कई लोग मिले थे ना, अच्छा उनको पता होगा, अब वो भी बोल सकते हैं। अंदर आत्मा को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए हमें? शांति चाहिए। और क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। शांति चाहिए, वो तो हो गया। और शक्ति चाहिए। और क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पवित्रता चाहिए, वाह वाह सबको सब कुछ याद है, तो सात चीजें चाहिए हम सबको, है ना। कोई भी मना नहीं कर सकता। आत्मा लाइट है, उस लाइट के सात रंग हैं। इस सातों रंगों को मिलाकर मैं आत्मा लाइट चमकती हूं। जितना ये रंग बढ़ते जाते हैं उतना मैं मेरी चमक बढ़ती जाती है, और अगर ये कम होते जाएं तो मेरी चमक यानी शक्ति कम होती जाएगी। तो कौन से हैं वो सात रंग, रिवाइज कर लेते हैं। सुख, बोलो बोलो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सबको चाहिए। इनकी कमी हो जाए तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है। पावर नहीं है तो पावर चाहिए। अब ये तो पता नहीं है कि चाहिए इसको, तो सोचते इसको चाहिए तो क्या करते हैं, बॉडी बनानी शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है, या फिर ऊंचा ओहदा मिल जाए ना, पावर आ जाएगी, है ना, फिर हम ये भी कर पाएंगे। एक्चुअली में पावर बॉडी को नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए पावर। सोच रहे हैं, ये हमारी सोच है कि सीट मिल जाएगी ना तो पावर आ जाएगी, ये भ्रम है। और ये भ्रम हमें धोखा देता है क्योंकि सीट चली जाएगी थोड़े दिनों के बाद। ये तो आनी जानी चीज है, लेकिन पावर, पावर आपको थोड़े दिनों की नहीं चाहिए, कुछ सालों की नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? एक किलो, दो किलो, चार साल, दस साल, पूरी जिंदगी चाहिए। चाहिए ना, इतनी पावर चाहिए जो जिंदगी होते और जिंदगी के बाद भी ये पावर आ जाए, है ना। अनलिमिटेड, बेहद। कितनी पावर चाहिए? बेहद। प्यार कितना चाहिए? कुछ घंटों का, कुछ सालों का, कितना? सदा। बच्चे को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, तो कितना चाहिए? अनलिमिटेड। शांति कितनी चाहिए? बेहद, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है मरने के बाद भी कहते हैं आत्मा को शांति दो, शांति चाहिए ना। सुख कितना चाहिए? कुछ पलों के लिए नहीं चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं, क्षण भंगुर, कुछ पलों के लिए, है ना। ढूंढ तो वही रहे हैं ना, जो चीजें खत्म होने वाली हैं उनमें सुख ढूंढ रहे हैं। जो रिश्ते, या कहें जो व्यक्ति जिनके पास ही नहीं है वो चीज, उम्मीद कर रहे हैं वो हमें वो चीज देंगे। अब उनके पास ही नहीं है, आपको क्या देगा, है ना। देगा तो तब ना जब उसके पास होगा। ये तो वैसे हो गया किराने की दुकान से हम कार लेने चले गए, मिलेगी? है ही नहीं। जब वो ही खाली है तो आपको कैसे भरेगा। अब हम सब यही क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड चीज, बेहद चीज हदों में ढूंढ रहे हैं। हद की चीज बेहद कैसे देगी, दे सकती है? बेहद चीज चाहिए किसको? बेहद को। ये सब चीजें किसको चाहिए? अनलिमिटेड चीज किसको चाहिए? जो खुद अनलिमिटेड है, है ना। लिमिटेड चीज किसको चाहिए? जो खुद लिमिटेड है। तो शरीर को वो चीजें चाहिए जिनकी हदें हैं, है ना, क्योंकि शरीर पांच तत्वों का बना, ये भी एक दिन खत्म हो जाता है, जैसे चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आत्मा को वो चीजें चाहिए जो कभी ना खत्म हो, सदा, सदा सुख, सदा शांति, सदा प्यार, सदा आनंद, है ना, सदा चाहिए। अब क्योंकि हम अपने को आत्मा समझते ही नहीं है, हम तो अपने को शरीर समझते हैं, तो ये सदाकाल की चीजें हम सोचते हैं शायद चॉकलेट खाने से मिल जाएंगी, शायद वहां घूमने से मिल जाएंगी, शायद वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए तो मिल जाएंगी, वो सीट मुझे मिल जाए तो मिल जाएंगी, हो जाएगी, वो नौकरी मिल जाए, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। ये सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते तो जिंदगी निकल जाती है, पर वो सारी चीजें मिलती ही नहीं है, उल्टा मिलती तो नहीं है, कम हो जाती है। क्योंकि वही बात, पहली चीज अपने को ही गलत समझ लिया, तो पहली राह ही गलत पकड़ ली। आप चल रहे हो यात्रा पर, शुरू में ही गलत डायरेक्शन में चले गए, मंजिल पर मिल पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो यही हम करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। तो वास्तविकता में ये सब चीजें चाहिए आत्मा को, शरीर को नहीं चाहिए। डेड बॉडी को चाहिए? सुख शांति आनंद प्यार डेड बॉडी को चाहिए है? नहीं चाहिए ना। किसको चाहिए थी? समझ आया? किसको चाहिए थी? मुझे। आत्मा कोई सेकेंडरी चीज नहीं है। कौन हूं मैं? आत्मा, मेरा शरीर। तो दो चीजें, मैं कौन? मेरा शरीर। बाकी सब चीजें मेरी हैं। मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरी ये चीज, कोई भी चीज है वो मेरी है, अलग है। अब इस मेरी में मैं सोचती हूं ये मैं हूं, न केवल शरीर है ना। बाकी सब चीजें जो मेरी है ना, उनको भी मैं ही समझ के चलती हूं। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो दुख देता है। क्या? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा कारोबार आपका है? आपका है तो आप ही का। पर किसने दिया? ईश्वर ने दिया। तो मैं भी किसकी हूं? परमात्मा की। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो भी क्या कहते, किसने दिया? भगवान ने दिया। तो मैं भी उस परमात्मा की हूं, और मुझे संसार में जो कुछ भी मिला है वो भी उसका दिया हुआ है। अब जो चीज उसकी थी उसको क्या सोचा? मेरी है। किसी और की चीज को अपना समझने के कारण दुख होता है। इनमें से कोई भी चीज आप अपने साथ नहीं लाए थे, ना लेके जाओगे, पर फिर भी हम उसको अपना समझ कर जीते। ये झूठ लाइफ में, ये जो झूठ हम बार बार अपने आप से बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, मेरा ये है, फिर मेरा ये है, फिर मेरा वो है, ये सारे झूठ जो हम पहले खुद से बोलते हैं, ये हमें धोखा देते हैं। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, करें, मन से एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हम क्या सोच रहे थे? मैं शरीर हूं। अब क्या सोचेंगे? मेरा शरीर। अब क्या सोचेंगे? मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूं, मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूं, मैं आत्मा इस मुख से बोलती हूं, मैं आत्मा इन हाथों से काम करती हूं, मैं आत्मा इन पैरों से चलती हूं। अब सेपरेट करते हैं। ये कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा मेरे साथ बहुत चिपक गया था। टाइट हो जाए ना वो कपड़ा, उतारना मुश्किल हो जाता है। इतना चिपक गया था कि इसको कुछ होता था ना तो मुझे कुछ होता था, परंतु अब पता चला ये तो मैं हूं ही नहीं, तो इसको ढीला कर दो। करे ढीला? एक अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। तो चलो पहला अभ्यास करते हैं। मन को एकदम शांत, सारी बॉडी को ढीला छोड़े, पैरों को ढीला एकदम लाइट, हाथों को हल्का छोड़े, हल्का बिल्कुल हल्का, कोई भी शरीर का भाग आकर्षित न करे, खींचे नहीं, एकदम हल्का छोड़े, शरीर का मध्य भाग हल्का, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, सारा ध्यान चेहरे पर, और चेहरे में भी। दोनों आंखों से थोड़ा सा ऊपर जहां मंदिर में तिलक लगता है, वहां मैं चेतन शक्ति चमक रही हूं। अपनी एक उंगली से खुद को तिलक दें। यही मैं आत्मा चमक रही हूं। हाथ छोड़े और फील करे, मैं शांत हूं। मैं शक्ति हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं पवित्र स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हो। मुझे लाइट में से निकलती ये इंद्रधनुषी सप्तरंगी किरणें फील करें, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है लाइट। मैं आत्मा, इस संपूर्ण देह की मालिक हूं। महसूस करें ये शक्ति, ये प्रकाश सारे मस्तिष्क में फैल रहा है, जैसे सारे शरीर में रक्त बहता है, बिल्कुल वैसे मुझ आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में, आंखों में महसूस करते जाए, जैसे एक शक्ति देह की हर एक कर्मेंद्रिय में फैली हुई है। मुझसे निकलती शक्ति कानों में, चेहरे में, श्वासों में, एक एक शरीर के अंग में फैलने दे। हाथों में शक्ति, गर्दन के नीचे, लंग्स में, स्टमक में, लिवर, शरीर के हर छोटे बड़े अंग में, हृदय में, आंतों में, पैरों में, पैरों के तले तक, ऊपर से लेकर नीचे तक शक्ति फैली है। मैं हूं तो ये शरीर बहुत काम का है, सब पूछते हैं। मैं शक्ति निकल जाऊं तो बिना रथी के ये रथ अरथी बन जाता है। मैं हूं तो इस शरीर रूपी डिब्बी की कीमत है। मैं ही हर कर्म को करने वाली शक्ति हूं। मुझसे ये जीवन है। महसूस करें स्वयं के महत्व को। इन हाथों से मैं काम कराती हूं। मेरे ही निर्देश से ये पैर चलते हैं। फील करते जाए मैं अलग देह अलग आत्मा अलग जीव अलग दीपक अलग ज्योति अलग हीरा अलग डिब्बी अलग। मैं सत्य हूं चैतन्य हूं। ये झूठ है और जड़ है। फील करे अपने सत्य स्वरूप को। मैं सदा हूं। ओम शांति। तो बार बार इस जड़ और चेतन को अलग करने का अभ्यास करें। और आत्मा जैसे कि आपने यहां तिलक लगाया ना, तो शरीर में यहां जैसे आप देख रहे हैं चित्र में भी इस स्थान पर विराजमान है। अब हमने बताया आत्मा यहां है, परंतु कई लोगों का क्या कहना है? कोई कहता है हृदय में है। देखो बहन इशारा कर रही है ना, कहते हैं ना दिल की धड़कन बंद हो जाए तो, है ना। कहीं कहते हैं यहां है, कोई कहता है यहां है, कोई कहता है नाभि में है। जितने लोग उतनी बातें। अभी हमने कहा यहां है तो आप मान जाओगे, फिर बाहर कोई कह देगा यहां नहीं है तो उसकी भी मान जाओगे, है ना? नहीं मानोगे? नहीं, उसको फिर समझाना भी पड़ेगा ना कि यहां क्यों है। अब आप देखो कोई भी गाड़ी होती है तो उसका ड्राइवर कहां बैठता है? कहां बैठता है? फ्रंट सीट पर, है ना। वहां भी फ्रंट में भी कहां? हाँ, जहां सारी गाड़ी का कंट्रोल होता है, राइट, है ना। वहीं तो बैठकर सारी गाड़ी को कंट्रोल करेगा ना, तो वहीं ड्राइवर बैठता है। अब इस गाड़ी का कंट्रोल रूम कहां है? यहां, है ना। मस्तिष्क से सारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, है ना, ऐसा ही है ना। तो कंट्रोलर कहां बैठेगा? यहीं बैठेगा ना, ना कंट्रोल रूम में। जब आप परेशान होते हो तो हाथ कहां जाता है? किसी ने सिखाया यहां हाथ लगाओ? तो परेशान कौन होता है? शरीर नहीं होता है, मैं आत्मा परेशान हो जाती हूं, है ना। शान से परे हो जाते हैं। हम खुश थे, अपनी शान से परे हो गए तो कौन हुआ? बॉडी नहीं हुई, आत्मा हुई। अपने आप हाथ यहां जाएगा। सबसे पहले सिर दर्द शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम कहां आ गई? यहां होता है ना। तो जब कोई पूछे कि यहां क्यों है तो बताना पड़ेगा ना कि बॉडी का कंट्रोल रूम कहां है? यहां। तो कंट्रोलर कहां बैठेगा? यहां बैठकर सारी बॉडी को कंट्रोल करेगा। यहां पर साइंटिफिक नजरिए से बताएं तो हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी। उन दोनों के बीच में आत्मा का निवास स्थान होता है। तो आत्मा यानी मैं इस स्थान पर बैठकर, जैसे राजा अपने स्थान पर बैठकर अपने सारी प्रजा को, इन कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हूं। मैं ठीक हूं तो सब ठीक है, ठीक नहीं भी है तो मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम में आ गई तो खराब तो खराब है ही, पर ठीक को भी खराब कर दूंगी। तो सारा किस पर आधार है? मुझ पर। और मुझ में क्या है? आत्मा, जिसे बॉडी के बारे में जाना। तो बॉडी के बारे में हमें पता चला इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हाथ है, हाथों से ये कर सकते हैं, आंखें हैं, आंखों से ये कर सकते हैं, पता चला ना हमें, जो हमें शरीर का ज्ञान दिया गया। वैसे ही आत्मा की भी तीन शक्तियां हैं, है ना? वो कौन सी? आप देखेंगे ऊपर यहां बने, आत्मा की तीन शक्तियां हैं। एक है मन। क्या है? पीछे आगे वाले क्या है? मुख से बोलते हैं ना तो याद रहता है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, दूसरा क्या है? और तीसरा है संस्कार। इन तीनों के बारे में हम जिक्र तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं। मन खराब है, मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन कर रहा है वो खाने का, मन कर रहा है वहां जाने का, सब कुछ है पर मन नहीं है, है ना? सब कुछ है, ये मन ना बड़ा बड़ा चंचल है ना? बहुत तंग करता है, करता है, करता है, कंट्रोल में ही नहीं आता, है ना? क्यों कंट्रोल में नहीं आता? मैंने जैसे पहले बताया, कंट्रोल में कोई चीज क्यों नहीं आती? क्योंकि क्या नहीं है? हाँ, राइट। देखो बच्चे को तो स्मार्ट हो गया क्योंकि पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसलिए कंट्रोल नहीं है, है ना? पावर आ जाए, नॉलेज आ जाए, है ना, बच्चे के बारे में पता चल जाए इसको चाहिए क्या, वो चीज दो, देखो कैसे काम करता है आपका। तो माइंड भी ऐसे ही है, मन भी ऐसे ही है, पता चल जाए ये मन भटक क्यों रहा है, क्या चाहिए इसे, वो मिल जाए, और जहां मिल जाता है इसे वो वहां चला जाता है। तो ज्ञान हो जाए और उसको हम वो पावर दे दें, तो ये मन आपका जो कहना मानेगा ना, असंभव को संभव करने की शक्ति किसके पास है? इस मन के पास है। आपको याद होगा महाभारत सीरियल देखा होगा बहुतों ने, उसमें घटना आती है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। एक प्रश्न था उसमें कि संसार में सबसे तीव्र गति किसकी है? किसकी है? मन की। आप देखो इस संसार में कितनी सारी चीजें हैं, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पांच तत्वों की शक्ति के कारण यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं डैम, वहां वाटर, बहुत पानी जो है वो तीव्र गति से टरबाइन पर पड़ता है और पानी बिजली में बदल जाता है। पानी और अग्नि अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत, लेकिन पानी बिजली में बदल जाता है जब तीव्र वेग से पड़ता है। तो ये जो तीव्र वेग है, चाहे वो जल की है, चाहे वो वायु की है, चाहे वो सौर ऊर्जा है ना, अग्नि की है, किसी भी पांच तत्वों के अंदर या कोई भी चीज जब वेग से पड़ती है तो उसका स्वरूप बदलने की वो शक्ति रखती है। और उसी के कारण आज हम बिजली का प्रयोग करते हैं। असंभव संभव हो गया, जो कुछ वर्षों पहले असंभव था आज संभव है, वो तो साइंस की शक्ति है। पता है किस वेग से पानी बह रहा है, पता है किस वेग से सौर ऊर्जा लाइट आ रही है, परंतु मन की गति इन सब की गति से कहीं ज्यादा है। ये समय और स्थान से भी पार जा सकता है। कितनी देर में? सेकंड से भी कम। यहां बैठे हो, बात करें आपके घर की, बात करें आपके बचपन की, बात करें आपके भविष्य की, कितनी देर में पहुंच जाओगे? पहुंच गए सेकंड से भी कम टाइम में कैसे पहुंचे? मन से पहुंच जाते हैं, स्थान से भी पार, समय से भी पार। इतनी गति तो पांचों तत्वों में किसी तत्व की नहीं है। ये किसके पास है ये शक्ति? आत्मा को सेकंड, आपके पास है, आप आत्मा हो। किसके पास है ये शक्ति? एक एक आपके पास है, ऐसा भी नहीं किसी एक के पास है, हर एक के पास है ये शक्ति। और इस शक्ति का आप क्या कर रहे हो? कुछ यूज किया इसका? इस असंभव को संभव करने वाली शक्ति का आप क्या कर रहे हो? पानी को कहते हैं, सोचते हैं कि कंजर्व कर लो, बचा लो, काम आएगा, है ना, बिजली को बचा लो, काम आएगी। ये मन की शक्ति का क्या कर रहे हो? व्यर्थ जाता जा रहा है। जिंदगी के अंदर इसी एक दिक्कत के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो आप। असंभव चीजें संभव हो सकती हैं, परंतु संभव भी असंभव प्रतीत जो होता है वो भी इस मन के कारण है। कर सकते हो, कैपेबिलिटी है, स्टैमिना है, सबके पास है, पर कर नहीं पा रहे हो। क्यों? इस मन के कारण। मन पावरफुल नहीं है, और इसको यदि पावर दे दो तो आप देखो, संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको। गारंटी है, ये पावर आपके पास है। कैसे ये पावर ले, कैसे ले ये पावर, जानते हैं आप? ये मन जो है ये व्यर्थ बहुत सोचता है। बेसिकली मन जो है चार तरह के विचार पैदा करता है। मन का काम है सोचना, विचार पैदा करना, सोचता है ना। चार तरह के विचार पैदा करता है। एक है सकारात्मक, पॉजिटिव। दूसरा है नकारात्मक, नेगेटिव। तीसरा है साधारण, आम बातें। और चौथा है वेस्ट, व्यर्थ बातें। सबसे ज्यादा क्या सोचता है? वेस्ट सोचता है। अब सोच तो रहा है, मैं कहूंगी नहीं, आज से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। कर सकते हो? नहीं, आदत पड़ गई है ना, आदत पड़ गई है। पता है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब सबसे पहले पॉजिटिव क्या है, शॉर्ट में बताती हूं पॉजिटिव क्या है। वो आपको सात गुण चाहिए। हर वो विचार जो इन सातों गुणों को बढ़ाते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, वो पॉजिटिव है। हर वो विचार जिसको सोचने के बाद जब आप सोचते हो तो ये कम हो जाता है, सुख की जगह दुख हो जाता है, शांति की जगह गुस्सा आ जाता है, अशांति हो जाती है, प्यार की जगह नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, आनंद की जगह लाइफ यूजलेस लगने लग जाती है, नीरस हो जाती है ना। शक्ति की जगह वीकनेस दिखाई देने लग जाती है ना। पवित्रता की जगह झूठ, कपट, धोखा आने लग जाता है। ज्ञान की जगह समझ ही नहीं आता क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर चीज जो इसके अपोजिट काम करती है, हर विचार, वो नेगेटिव है। साधारण चीजें तो हम करते ही रहते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, उठना, बैठना है। और वेस्ट पता ही नहीं है क्या सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा कब आते हैं वेस्ट? जब खाली होते हो, दुनिया जहान की बातें सोचने लग जाते हो। अभी मन की शक्ति को आप ऐसे वेस्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अब क्या करें? आपको पता है ये विचार कैसे आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव? इसका एक तरीका है ना। हम क्या सोचते हैं वो किस पर आधारित है? हाँ, देखो यहां हम सोचते हैं, ओके, सोचा, कैसे सोचते हैं? जो हम देखते हैं, राइट, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं, राइट, ऐसा होता है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वैसा हम, अगर हम अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं तो हम राइट। अगर हम बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं तो बुरा सोचते हैं, राइट। कंट्रोल नहीं है कि क्या देख रहे हैं, जो दिख रहा है सब देख रहे हैं, राइट। जो सुनाई दे रहा है वो भी सुन रहे हैं, है ना, पता है नहीं सुना चाहिए फिर भी सुनते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं है। तो यहां भी क्या कंट्रोल होगा? जब यहां कंट्रोल नहीं है, जब यहां कंट्रोल नहीं है तो यहां कंट्रोल होगा, है ना। और जब यहां कंट्रोल नहीं है तो फिर यह है रॉ मटेरियल। कोई मशीन फैक्ट्री होती है ना, उसमें यहां से रॉ मटेरियल, सब्जी बनाते हो ना तो जो सामान इकट्ठा करते हो वह रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो यह कच्चा माल, यह रॉ मटेरियल। यहां होती है मशीन की प्रोसेसिंग और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां से निकलता है या यहां से निकलता है। यानी जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसका आधार क्या है? जो हम सोचते हैं। और जो हम सोचते हैं उसका आधार क्या है? जो हम देखते और सुनते हैं। अब अगर यहां कंट्रोल नहीं है, यहां कंट्रोल नहीं है, यहां कंट्रोल नहीं है, तो यहां और यहां भी फिर हम क्या कहते हैं? गलती से हो गया, है ना, गलती से बोल दिया, गलती से बोला है ना कुछ गलती से नहीं बोला है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, है ना। कहां गड़बड़ हुई? है ना, यहां और यहां गड़बड़ हुई ना। तो अब क्या होता है? अब आपको पता चल गया ना कहां से गड़बड़ होती है। हम कई बार सोचते कोई बात नहीं, देखा ही तो है, किसको क्या पता चलता है, सुना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि ये संकल्प बीज है। यदि बीज शक्तिशाली नहीं है तो कर्म शक्तिशाली नहीं है। गलत काम करोगे तो गलत फल भी मिलेगा, तैयार रहना। जब आप कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने कुछ किया है, कुछ किया है तो ऐसा हुआ है, परंतु अब तक हम बस करते जा रहे थे कि यहां भी कंट्रोल नहीं, यहां भी कंट्रोल नहीं, यहां भी कंट्रोल नहीं, यहां भी कंट्रोल नहीं, यहां भी कंट्रोल, अनकंट्रोल। तो फिर फल भी अनकंट्रोल, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। क्यों कुछ हो सकता है? जो करा है वही तो होगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। जब तक आप ना चाहो, कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है। कहां गड़बड़ किया है पता चला? कहां गड़बड़ हुई? तो जब हमें पता चलता है अपने बारे में कि ये मन में गड़बड़ हुई है, तो हम मन को परिवर्तन करते हैं। इसीलिए बचपन में हमें सिखाया जाता है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, पर सबसे इंपॉर्टेंट है बुरा ना सोचो। तो अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, तो अच्छा ना हो ऐसा नहीं सकता। परंतु जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, फिर कुछ भी होगा, फिर तैयार रहे कुछ भी होने के लिए। तो सारी प्रॉब्लम कहां थी? सोल में, जो आत्मा में मन था। इस मन की शक्ति को यदि आप एकाग्रचित होकर यूज करना सीख जाओ, तो आप इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हो। व्यर्थ से हटाकर समर्थ की ओर ले जाओ। पॉजिटिव जो चाहिए, अच्छा सोचना, उसके लिए अच्छा देखना, अच्छा सुनना। तो जब अब अच्छा सोचने लग जाओगे, अच्छा होने लग जाएगा, तो जीवन में सब कुछ आपके अनुसार होने लग जाएगा। नहीं तो सब चीजें आपके हाथ से जाती जाएंगी। इसीलिए कोई भी चीज जो बाहर गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो बाहर उसको ठीक करने की नहीं सोचो। कहां ठीक करूं? यहां ठीक करो। जब यहां ठीक कर लोगे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। दूसरी शक्ति है, पावरफुल शक्ति, वो है हमारी बुद्धि। बड़े काम की शक्ति है। मन सोचता है तो बुद्धि क्या करती है? समझती है ना। मन ने कहा वहां जाना है, मन ने कहा वो खाना है, तो बुद्धि क्या कहती है? कैसे जाना है ना, बनाना है या मंगाना है ना। तो ये जो बुद्धि लगती है ना, ये इंटेलेक्ट, समझना चीजों को, है ना। और जो हम स्मृति में चला जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है ना, जैसे है मुझे याद आ गया मुझे वो बात, ये कहां है मेमोरी? ये बुद्धि में है। अनुभव बन जाती है वो चीज, ये कहां बनती है? ये बुद्धि में बनती है। शरीर में ना मन है ना बुद्धि है, ये कहां है? आत्मा में है। परंतु इस बुद्धि का हमने क्या किया, पता क्या किया? एक स्टोरी सुनाती हूं छोटी सी, अब बताना क्या किया हमने। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, तो वो बहुत शरारत कर रहा था, तो उसकी शरारत को देखते देखते उसकी मम्मी ने उसको एक सजा दी। वो पानी पी रही थी, पानी का गिलास खत्म हुआ, उसने कहा ये गिलास पकड़ के खड़े हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूं ना तब तक इस गिलास को रखना नहीं, नहीं तो और बड़ी सजा मिलेगी। तो बच्चा छोटा था, कहना मान लिया, खड़ा हो गया, और मम्मी अपने काम में बिजी हो गई, भूल ही गई कि मैंने तो अपने बेटे को सजा दी थी। अब वो तो अपने काम में लग गई, और वो बच्चा गिलास खाली था, फिर भी दर्द तो होता है ना ज्यादा देर तक पकड़ने से, उसको दर्द हो, परेशान हो, पर डर के मारे कि और बड़ी सजा ना मिल जाए वो पकड़े रखा बेचारा। उसके फ्रेंड ने कहा, उसका फ्रेंड आया, उसने कहा रख दे रख दे, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। उन्होंने कहा नहीं, मम्मी ने देख लिया तो फिर उसका फ्रेंड उसकी मम्मी के पास गया और बताया कि उसको ना पेन हो रही है। तो उसकी मम्मी कहती, ओ मैं तो भूल ही गई थी, गई और अपने बेटे को हाथ उसके से गिलास लिया और देखा उसका हाथ में सारा खून का दौरा जैसे रुक जाता ना तो सारा रेड हो गया था, छोटा था बच्चा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और गिलास पकड़े रखता ना बच्चा तो पैरालाइज हो जाता आपका हाथ, इस बच्चे का हाथ। अब आप सोचो, खाली गिलास हाथ में पकड़ने से, चलो बच्चे ने एक घंटा पकड़ा होगा, हम बड़े हैं तो दो घंटा पकड़ेंगे, तीन घंटा पकड़ेंगे, पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा भी वही हाल होगा जो बच्चे का हो गया था, हाथ में गिलास खाली पकड़ने से। हम अपनी बुद्धि में बहुत सारी बातें संभाल के रखते हैं, इधर उधर की बातें, है ना, इसने ये कहा वो कहा, और बड़े नाच से कहते मुझे सब याद है, एक एक बात याद है, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। और कितनी पुरानी बातें, हाँ एक आधी घंटे की बातें नहीं, हाँ सब याद है हमें, एक एक बात याद है, बचपन की भी बातें, इधर उधर की, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। कहाँ रखते हैं? इस बुद्धि में रखते हैं, रखते हैं, बड़े संभाल के रखते हैं, और बड़े नाच से कहते हैं मुझे सब याद है। अच्छी बातें रखते हैं, बातें अच्छी होती हैं, जब जब उनके बारे में सोचते हैं ना हमारा मन खराब होता है और दूसरे का भी मन खराब कर देते हैं। और बुद्धि की तिजोरी में संभाल के रखते हैं। अब कहीं पर कचरा संभाल के रखा हो, क्या करेगा वो कचरा उस स्थान का? सब खराब कर देगा ना, बीमारी फैलाएगा, गंदगी, मच्छर मक्खी सब पैदा कर देगा। ऐसे ही होता है, हम अपनी बुद्धि में वो पुरानी पुरानी बातें संभाल कर रखते हैं बड़े नाश से, और फिर क्या करता है वो हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। ये जो आप कहते हो ना याद ही नहीं रहता आजकल, पता नहीं क्यों, बुद्धि का काम है याद रखना, समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं। ये समझना काम है किसका? बुद्धि का निर्णय नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, ये करूं या ये करूं, ये साड़ी लूं या वो साड़ी लूं, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दूसरे से पूछते हैं, तुम बताओ जरा। बुद्धि आपके पास है, उसका काम है डिसाइड करना, उसका काम है चीजों को मेमोराइज करना, उसका काम है, ये आपके पास है, पर काम क्यों नहीं कर रही वो चीज। वॉशिंग मशीन आपके पास है हाँ, परंतु वो काम ही नहीं कर रही है, कपड़े नहीं धो पा रहे हो आप उसके अंदर, कचरा भर गया है, गंदगी भर गई है, इसको निकालो। ये जो गंदगी चली जाती है ना, ये बुद्धि को मलिन कर देती है, मैला कर देती है। जैसे आंखें हैं पर आंखों के आगे कोई परत आ जाए तो दिखाई नहीं देता, आंखों का काम है देखना, पर ये जो मिट्टी है ना जो आ गई है, ये देखने नहीं दे रही है। तो बुद्धि भी आत्मा का एक तीसरा नेत्र है, इतनी शक्ति है जो ये बुद्धि मन की भावों को भी, आपके भी दूसरे के भी, समझ सकती है। ये अपने और दूसरे के भविष्य को भी समझ सकती है, बहुत तीव्र है ये बुद्धि, ये तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, जो आत्मा को समय और संकल्प से पार की बातें भी समझा सकती है। इस बुद्धि बल की कमाल जबरदस्त है, जिसके कारण इंसान गरीब से चोटी तक पहुंच जाता है। तो ये बुद्धि को हम जो जंक लगा देते हैं ना, इधर उधर की कचरे वाली बातों से, ये काम करना बंद कर देती है। तो क्या करना है, इस तीसरे नेत्र के आगे के इस पर्दों को हटाना है, इनको मिटाना है, सदा के लिए खत्म कर देना है। इसलिए ही हम यहां आए हैं, मन को स्पष्ट साफ करने, मन को पावरफुल बनाने, बुद्धि को पावरफुल बनाने, बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने, इस मैल को हटाने, ताकि आत्मा पावरफुल बन सके। तो इन सबको हमें खत्म करना है। और तीसरा है, हमारे तीसरी चीज वो है संस्कार, है ना। संस्कार कैसे बनते हैं, जब हम कोई काम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे वो आदत ऐसी हो जाती है कि हम न चाहते भी वो कर देते हैं। शुरू शुरू में कोई चीज नहीं होती है, यानी मन ने सोचा, बुद्धि ने समझा, सोच समझ के किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, बार बार किया, तो आदत बन गई। और फिर आंखें बंद करके भी कर लोगे, संस्कार बन गए। तो गहरी आदतें जो अंदर चली जाती हैं, वो आदतें जो मिटाए ना मिटे, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे संस्कार, वैरायटी होते हैं संस्कार, मुख्य तौर पर मोटे रूप से देखें तो चार तरह के। एक वो संस्कार जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, जो भगवान के घर से हमें मिले हैं, सुख देने के, शांति देने के, सातों गुणों के संस्कार, वो है हमारे अनादि संस्कार। वो संस्कार है हम सब के अंदर, भीतर समाए हैं। कुछ संस्कार हैं जो पूर्व जन्म से हम कैरी करते हैं, होता है ना, एक ही घर में दो बच्चे, दोनों के अलग अलग संस्कार है ना, एक चुप रहता है और दूसरा बहुत बोलता है ना, एक तो भोला भाला है, दूसरा बड़ा तेज है, होता है ना, एक ही घर में है, एक ही पिता के बच्चे हैं, पर दोनों के संस्कार बने नहीं है अभी, पहले से लेकर आया है। तो पूर्व जन्म के संस्कार, इसकी बहुत गहराई है, अभी शॉर्ट में समझते हैं केवल। तो एक है पूर्व जन्म के संस्कार, एक है पैतृक संस्कार, माँ बाप से, दादा दादी से मिलते हैं ना, पापा पे गया, मम्मी पे गया, जीन्स में जो आ जाते हैं हमारे, है ना, दादे पे गया है। तो ये सब क्या है, एक होते हैं देह के संस्कार जो जीन्स में आते हैं, पैतृक संस्कार। फिर होता है कि हम संसार में रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, है ना, जिनके साथ मिलकर हम पलते हैं, बढ़ते हैं, है ना, जिस आप जैसे कहीं पर भी रहते हो, किसी भी स्थान पर रहते हो, उसके अनुसार भी, है ना, जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनको देख देख कर भाषा सीखते हैं, उस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो हमें बाहर की परिस्थितियों से या बाहर के वातावरण या वायुमंडल से या संग से जो हमें संस्कार मिलते हैं, और फिर जो हम अपने संस्कार बनाते हैं अपने अच्छे कर्मों से, वो है सब विशेष संस्कार। जब वो हमारे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, यानी हम अपने कर्मों से भी अपने संस्कार बनाते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज जो पीछे से आई हो या माँ बाप ने दी हो या वातावरण से मिली हो, नहीं, पर इंसान अपने सोच कर और अपनी समझ से, अपने सोच समझ से भी जो कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, उससे भी अपने संस्कार बना लेता है। तो ये शक्ति हर एक के पास है। तो एक है अनादि संस्कार, और ये अनादि संस्कार जो ईश्वरीय संस्कार है, आप इमर्ज कर सकते हो अपने श्रेष्ठ कर्म से। इसी कारण से एक आत्मा जो साधारण थी वो ग्रेट बन जाती है, महान आत्मा बन जाती है। मदर टेरेसा ऐसे पैदाइशी मदर टेरेसा थोड़ी ना थी, स्वामी विवेकानंद ऐसे तो नहीं थे। तो अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ये श्रेष्ठ संस्कार बने। तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, अच्छा सकारात्मक पावरफुल सोच के आधार से अपनी बुद्धि, श्रेष्ठ पवित्र शुद्ध बुद्धि के आधार से जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। तो ओवरऑल आत्मा यानी मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों पावरफुल बन जाएंगे, यानी आत्मा पावरफुल बन जाएगी। बनना चाहते हैं हम? चलो अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं और फील करेंगे हम मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को पावरफुल कैसे बनाएं। एकदम मन को शांत करें, ढीला छोड़ते हैं सारी देह को, हल्का, एकदम हल्का। महसूस करें जैसे आकाश में रोज रात को सितारे चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे मस्तक के बीच में एक छोटा सा सितारा दिव्य सितारा, चेतन सितारा चमक रहा है। सारा ध्यान इस सितारे पर, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस सितारा, लाइट, प्रकाश। ये मैं हूं, सारी दुनिया से न्यारा मैं सितारा, स्वीकार करें यही मैं हूं। मैं इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान होकर आंखों से देख रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं, हाथों से काम ले रहा हूं, पैरों से चल रहा हूं। देखो कितना प्यारा हूं मैं। मेरे भीतर शुद्ध मन है, जिससे मैं अच्छा और सबके लिए मंगलकारी सोचता हूं, सकारात्मक सोचता हूं। ये मन मेरी ही शक्ति है। मेरे ही भीतर बुद्धि है, जिसमें कोई व्यर्थ नहीं, जो साफ है। जो शक्तिशाली है, जो सही निर्णय लेती है, जो समय और परिस्थितियों को परख लेती है। मेरे भीतर श्रेष्ठ संस्कार है, सही सोच और समझ से मैंने ये संस्कार बनाए हैं। फील करें ये मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, जिन्हें मैं आज यथार्थ रीति जान गया हूं, खुद को पहचान गया हूं, अपने अस्तित्व को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, मैं बहुत करीब से पहचान गया हूं। फील करें सितारे की चमक को, मैं ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत सुखदायी सितारा हूं। ॐ शान्तिः।